वृंदात्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
पूज्य गुरुवर क्षमा सागर जी महाराज की।
ये तो सारी चीजें हो गई। मैं तो देख रहा था कि इसमें से क्या किया जाए, तो सब हो गया इसमें तो लगभग छह डाला बहुत बड़ी है वो तत्तार सूत्र तो चतुर्मास में पढ़ेंगे तत्वार सूद बेटे बहुत टाइम लगेगा। बीच में छोड़ के चले जाऊंगा आधा बता देना इसमें कोई भी चीज ऐसी समझ में नहीं आ रही। कोई भी चीज विस्तारेंगे तो टाइम तो लगेगा उसमें। मुझे बीच में एक दूसरा विकल्प आ गया ना, उसमें मेरा टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, नहीं तो डबल हो गया मुझ मेरा काम। अब आचार्य की आज्ञा है तो आज्ञा का पालन तो करूंगा, चाहे मेहनत हो। तो वो बीच का काम पहले वो करके फिर उसके बाद अपने रास्ते पर जाना मुझे, तो इस वजह से। नहीं तो उतने दिन और आपके आपके पल्ले में जाते सीधा सीधा। आप समझ रहे हैं उस चीज का मेरी मेहनत जो है ना बहुत होगी, जितने में मैं वहां पहुंच जाऊंगा अपने स्थान पर उतने में तो घूम करके वापस यहीं आऊंगा। तो इस वजह से उतना टाइम तो मुझे चाहिए कि उतना करके फिर वापस आऊं, फिर यहां से मूव करूं अपने रास्ते पर। तो आराम से अच्छा जितना रह जाएगा उतना ही सही है ना। वापस आके रुकने वाले नहीं सब सब होशियार हो गए वो देख लेंगे। इसमें जो है ये तो देवशास गुरु की जो केवल रवि किरणों वाली पूजा है ना, उसका उसके अर्थ थोड़े से समझ में आ जावे तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। थोड़ा सा नयों की अपेक्षा से वर्णन है, इसलिए बारह भावनाओं का उसमें विशेष रूप से चिंतन है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो फिर हमें बारह भावना का चिंतन नहीं करना, उस समय तो हमें भगवान के गुणगान करना। तो बात तो ठीक है, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई पूजन के समय भी और इस तरह से करता है तो हर्जा भी नहीं, क्योंकि मन उसका उसमें लग गया है। इसलिए बाद में तीनों देव गुरु शास्त्र की भक्ति भी करी गई है, वो उसका अर्थ अपन देखते हैं। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, केवल किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस सृजन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण दर्शन बोध चरण पथ पर अविरल बढ़ते हैं मुनिगण उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन इंद्रिय के भोग मधुर विश्वसम लावण्यमयी कंचन काया इंद्रिय के भोग मधुर विश्वसम लावण्यमयी कंचन काया यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है मैं अब तक जान नहीं पाया कुछ जड़ की क्रीड़ा है मैं अब तक जान नहीं पाया मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूँ जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है संतप्त हृदय प्रभु चंदन शम शीतलता पाने आया हूँ प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया हूँ उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु पर से न लगा हूँ किंचित भी हूँ से न लगाऊं किंचित भी फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया निज शाश्वत अक्षय निधि पाने अब दास चरण रज में आया अब दास चरण रज में आया यह पुष्प सुकोमल कितना है प्रतन में माया, कुछ शेष नहीं है। पुष्प सुकोमल कितना है तन में माया, कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। मेरे जूता का लेश नहीं। चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है। निज में प्रभु प्रभु जो अंतर का कालुष धोती। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। इंद्रिय मन के षट रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ।
कितने अर्थ हो पाएगा कि पूरे आठ कर्त के और अर्थ बताएं, अष्टद्रव्य के पूरे हो जाएं, है ना? वही ठीक अच्छा है। वैसे आसान है अर्थ तो। जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने उजियाला। समझा था मैंने उजियाला। झंझा के एक झकोरे से जो बनता घोर तिमिर कारा। एक झकोरे से जो बनता घोर तिमिर कारा। अतएव प्रभु यह नश्वर दीप समर्पण करने आया हूँ। एव प्रभु यह नश्वर दीप समर्पण करने आया। तेरी अंतरलों से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। अंतरला से पर दीप जलाने आया। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ केरी। मेरा द्वेष किया करता परिणति होती जड़ केरी। यो भाव करम या भाव मरण युग युग से करता आया हूँ। यो भाव करम या भाव मरण युग युग से करता आया हूँ। निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ। जग में जिसको निज कहता मैं वो छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा। यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु, शाश्वत सफल पूजा तेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु, सार्थक निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। काशायक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। अनुपम सित होता, केवल रवि जगमग करता। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरहंत अवस्था है। अरहंत अवस्था। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। और तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। अब इसके अर्थ देखें। जिस समय मैं पूजा करता था तब मुझे इसके अर्थ बहुत नहीं आते थे, पर समझ में सब आता था कि क्या पढ़ रहा हूं। 3 साल तक यही पूजा करी, फिर तो आचार्य श्री के चरणों में आ गया। इस पूजा के करने में मुझे 1.5 घंटे लगता था। अभी तो अपन ने इतनी जल्दी पढ़ ली, मैंने इतनी जल्दी तो एक ही पद एक बार पढ़ने से क्या मजा। दो दो तीन तीन बार पढ़ता था फिर चढ़ाता था। हाँ, एक ही पद में, क्योंकि और दूसरी पूजा करने का कोई था ही नहीं। ना मुझे अर्घ चढ़ाना आता था, मैंने कभी कोई भी अर्घ नहीं चढ़ाया किसी के लिए भी। बस अकेले देवगुरु शास की पूजा में सब आ गए। अर्घावली पीछे दी रहती, अपने को कभी नहीं चढ़ाई अपन ने। शांति पाठ जरूर किया और किसी से पूछा नहीं कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। सलाहकार बहुत है संसार में, अपने को जिसमें अच्छा लगे वैसे ही करना चाहिए। अगर पूछा होता तो हम भी फिर वो आनंद नहीं ले पाते। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित, कोई बात नहीं, वो तो घोड़ा कूद गया, दौड़ करके आ जाओ। वाह, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। केवल ज्ञान को सूर्य माना है, तो केवल रवि मतलब केवल ज्ञान रूपी सूर्य, उसकी किरणों से अर्थात केवल ज्ञान के द्वारा सीधा सीधा। केवल ज्ञान तो सूर्य हो गया और उसकी किरणें तो यानी ज्ञान, केवल ज्ञान रूप जो ज्ञान है वैसा ज्ञान, उससे जिनका अंतर, अंतर यानी जिनकी चेतना उससे प्रकाशित है, उस सृजन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन और उन्हीं के द्वारा कही गई जो वाणी है जिनेंद्र भगवान की, जिसमें तत्वों का सुंदरतम दर्शन यानी तत्वों का जो यथार्थ स्वरूप है देखा जाए तो संसार में सबसे ज्यादा सुंदर है तो वह आत्म तत्व ही है। वो ना हो तो कहीं कोई सुंदरता नहीं है। सुंदरता देखने वाला भीतर बैठा हुआ है, बाहर कहीं सुंदरता नहीं है। देखा जाए तो आत्मा ही भीतर से सुंदर है या नहीं है ये कहती है। तो देखा जाए, एक जगह मैं पढ़ता था तो लिखा था कि दूसरे को सुंदर कहने वाला स्वयं बहुत सुंदर है, यानी हमारी आत्मा ही। आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखा कि सर्वत्र सुंदरो लोगे, अगर सब प्रकार से इस लोक में सुंदर है तो एयत्त निच्छय गदो, एकत्व विभक्त जो आत्म तत्व है वही सबसे सुंदर है। कह रहे हैं कि उस जिनेंद्र भगवान का स्वरूप तो ऊपर बता दिया कि जो केवल ज्ञान से युक्त हैं और उनके द्वारा कही गई जो वाणी है जिसमें कि तत्वों का विशेष रूप से आत्म तत्व का अत्यंत स्पष्ट और विशद वर्णन किया है, सद्दर्शन बोध चरण पथ पर, और उसी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, बोध मतलब ज्ञान और चरण मतलब चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के मार्ग पर अर्थात मोक्ष मार्ग पर, उसी जिनवाणी के द्वारा बताए गए मोक्ष के मार्ग पर अविरल विदाउट इंटरवल कंटिन्यू, अविरल मतलब जो निरंतर बढ़ने वाले हैं, कौन है? मुनिगण, उन सब के लिए, उन देव के लिए, उन उस परम आगम के लिए और उन परम गुरुजनों के लिए शत शत बंधन, शत शत बंधन, सौ सौ बार मेरा यानी बारंबार मेरा नमस्कार हो। इसमें तीनों आ गए। देव कौन है? केवल ज्ञान से युक्त यानी सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी, सारी चीजें आ गई। और जिनवाणी क्या है? जिसमें कि सात तत्वों का वर्णन है, प्रयोजन भूत वह जिनवाणी है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय की आराधना में लगे हुए, या आत्मानं साधयति इति साधु, जो आत्मा की साधना में लगे रहते हैं अर्थात रत्नत्रय की साधना में लगे रहते हैं वे मुनिगण। इस तरह से देव शास्त्र गुरु ये तीनों, इसका क्रम कहीं कहीं पर हमारे आचार्य महाराज तो देव गुरु शास्त्र कहते हैं और कई जगहों पर देव शास्त्र गुरु, तो इस पे भी कई लोगों को बड़ा वो लगता है कि किसको पहले किसको आग पीछे, तीनों बराबर हैं। ये ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु में तीनों को समान माना है, क्योंकि देव अरहंत और सिद्ध हैं और उनके द्वारा कही गई जो वाणी है वो देव के समान ही पूज्य है, और उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु जो पंच परमेष्टि में आते हैं वे भी पूज्य ही हैं। पूज्यता की दृष्टि से सभी समान रूप से पूज्य हैं। आगे पीछे रखने का कोई विशेष औचित्य माने अगर अपन अपेक्षा लगाएंगे तो औचित्य है, भगवान को सबसे पहले रखना पड़ेगा, उसके बाद उनके द्वारा कही गई वाणी शास्त्र, और उस वाणी के द्वारा जिन्होंने मोक्ष का मार्ग अपनाया है वे गुरु। इस तरह से देव शास्त्र और गुरु, ये क्रम हो गया। दूसरा देखें, सबसे पहले भगवान देव, फिर उनके द्वारा जो वाणी कही गई वो डायरेक्ट तो हम तक नहीं आई, बीच में गणधर जैसे महान गुरुओं ने उसको कंपाइल किया और कंपाइल करके फिर हमें दी, तो उसके बाद हम किसको याद करेंगे? जिन्होंने कंपाइल की तो हम पहले देव को और फिर बाद में गणधर इत्यादि जो मुनिजन है महान, उन मुनियों को, और फिर बाद में उनके द्वारा कंपाइल करके जो हम तक दी गई वाणी जिन वाणी, हम उसके बाद शास्त्र को रखेंगे। तो दोनों ही ठीक है, देव शास्त्र गुरु कहें या देव गुरु शास्त्र कहें, दोनों में कहीं कोई माने किसी के महत्व को कम ज्यादा किया जा रहा हो ऐसा नहीं समझना। सबका अपना अपना अपनी जगह पर महत्व है तीनों। अब एक एक द्रव भगवान के सामने समर्पित करते हुए और उसके लिए उनके अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं भगवान से। इंद्री के भोग मधुर विष सम, मीठा जहर जो खाने में बहुत अच्छा मालूम पड़ता है लेकिन मरण का कारण बन जाता है। तपन ने पढ़ा कि सेवत लागे नीके और बेरस होए विपाक समय अति। जब उनका फल मिलता है तो बहुत कष्ट भोगना पड़ता है लेकिन जब उन पदार्थों का सेवन करते हैं तो भले जान पड़ते हैं। ठीक ऐसे ही है इंद्री के सुख। लावण्यमयी कंचन काया, बहुत सुंदर कंचन के समान स्वर्ण के समान आभा वाली जो देह है वह भी कैसी है। वह भी हमारे संसार में भटकाने और अटकाए रखने वाली तो है ही। यह सब जड़ की क्रीड़ा है। अगर देखा जाए एक दृष्टि से तो पांचों इंद्री के विषय कौन से हैं, जड़ पदार्थ हैं। अपन ये सोचेंगे कि जो हमारे संपर्क में किसी का रूप आ रहा है देखने में तो वो तो चेतन है। नहीं भैया, चेतन को तो अपन अपने इंद्रियों का विषय बना ही नहीं सकते। जब भी इंद्रिय और मन का विषय बनता है पुद्गल ही बनता है, क्योंकि रूपी नहा पुद्गला। जो रूपी है वो पुद्गल है, अरूपी है वो तो जीव, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये सब अरूपी द्रव हैं। अरूपी द्रव का मतलब होता है जो हमारे इंद्रिय और मन की अप्रोच के बाहर हो, हमारी उनकी पकड़ में नहीं आ सकते। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये सब जड़ की कीड़ा है। जड़ मतलब अचेतन वस्तुएं हैं। मैं अब तक यह जान नहीं पाया, मेरी अपनी अज्ञानता भगवान के सामने निवेदन कर रहे हैं। तीन तरह से भगवान की स्तुति की जाती है, एक तो अपनी आलोचना करते हुए, एक भगवान के गुणगान करते हुए, और एक संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता यानी तत्व का विचार करते हुए। तीन तरह से पूजाएं लिखी गई हैं। तत्व ज्ञान परक पूजाएं लिखी गई, भगवान की भक्ति परक लिखी गई, अपनी आलोचना परक भी लिखी गई। प्रभुपतित पावन और मैं अपावन, भगवान की प्रशंसा भी कर रहे हैं अपनी आलोचना भी करते चले जा रहे हैं। इसमें यही चीज है कि हम अपनी अज्ञानता का भगवान के सामने और क्या कहेंगे उसको, एक्सेप्टेशन, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं कि ये मेरी अज्ञानता रही है। मैं भूल स्वयं के वैभव को, मेरा अपना आत्मा का जो स्वभाव है, मेरे अपने आत्मा की जो निजी संपदा है उसको भूल करके परममता में अटकाया हो। अन्य पर पदार्थों को जो इंद्री के विषय हैं या मेरा शरीर है या दूसरे का शरीर है उसमें ही मैं ममत्व भाव रखता हूं। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया हूं, मैं अपने अज्ञान को हटाने के लिए आया हूं। अपन ने पढ़ा था अज्ञान के नाश करने के लिए और हम जल चढ़ाते हैं। जल को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। ज्ञानावरण कर्म के अभाव होने पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए अज्ञान के अभाव या कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जल चढ़ा रहे हैं। निर्मल सम्यक नीर लिए, यहां पर सम्यक क्या है, मायने क्या लेंगे अपन, प्रासुक। हाँ, जो जिस तरह से मुझे जल चढ़ाना है वैसा। और दूसरा सम्यक का अर्थ क्या लेंगे, समीचीन, ज्ञान का प्रतीक है वो, इसलिए सम्यक नीर लगा दिए। नीर ज्ञान का प्रतीक है और सम्यक नीर मतलब समीचीन ज्ञान, निर्मल सम्यक ज्ञान के साथ अब मैं अपने मिथ्यात रूपी ज्ञान तो अपने आप में गड़बड़ नहीं होता, ज्ञान को गड़बड़ कौन बनाता है, सम्यक मिथ्यात। गंगा गए सो जम गंगादास, जमुना गए सो जमुनादास, ज्ञान का तो ऐसा है। ज्ञान मिथ्यात्व के साथ हो तो वही अज्ञान कहलाता है और सम्यक दर्शन के साथ हो तो वही सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। तो कह रहे हैं कि मैं ज्ञान की प्राप्ति करके और अपने उस मिथ्यात्व मल अर्थात अज्ञान भाव को धोने के लिए आया हूं आपके चरणों में। मैं अपनी अज्ञानता को स्वीकार तो करूं पहले, और कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि पांच इंद्री के मन जो मेरे ज्ञान के विषय बनते हैं, शरीर दूसरे का मेरा अपना मेरे ज्ञान का विषय बनता है और मैं उनमें ही ममत्व और आशक्ति कर लेता हूं, ये मेरी अज्ञानता है। मुझे उसके भीतर बैठी हुई आत्मा नहीं दिखाई पड़ती है, मुझे पांच इंद्री के विषय जो कि जड़ है और देह जो कि जड़ है वो दिखाई पड़ती है, मुझे चेतना नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए मुझे अपने चेतना के वैभव या कि अपनी निजी संपदा का भान नहीं है, बाकी संसार के इस वैभव को ही मैं ममत्व पूर्वक अपना मान करके और अज्ञानता में जीवन व्यतीत करता हूं। इस अज्ञान को मैं आपके सामने आकर के जान गया हूं, ये कहना चाह रहे हैं भगवान से कि आपने कुछ भी नहीं किया मेरे अज्ञान को हटाने के लिए, लेकिन आपके सम्मुख आकर के और मैंने मेरा ज्ञान आपके दर्शन करके अपने आप और हट गया है और अब मुझे लग रहा है कि मैं अपने अज्ञान को और हटाने के लिए समीचीन ज्ञान प्राप्त करूं, इसके लिए आपके सामने जल समर्पित करने हैं। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, जड़ पदार्थ अपने अनुरूप परिणमन करते हैं, उत्पाद वे द्रव्य सब द्रव्यों का स्वभाव है, सबकी अपनी अपनी निजी पर्यायें, कभी जीव अजीव रूप से परिणमन नहीं करता, अजीव जीव रूप से परिणमन नहीं करता, ये क्रम है और यही क्रम नियत है। जीव कभी अजीव रूप से परिणमन नहीं करेगा और अजीव कभी जीव रूप से परिणमन नहीं करेगा, इसलिए कह रहे हैं कि जड़ और चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती रहती, कोई किसी के काम में इंटरफियर नहीं करता। ये बात जुदी है कि मैं अपने राग द्वेष परिणामों में अन्य वस्तुओं को निमित्त बना लेता हूं, ये मेरी अपनी कमजोरी है। एक ही वस्तु चार लोगों को अलग अलग भाव उत्पन्न करने में सहायक होती, इसका अपन उदाहरण पढ़ते हैं प्रथमान योग में कि मृत देह को स्मशान में देख करके कुत्ता विचार कर रहा है कि जरा लोग हट जावे तो मेरे खाने का साधन बन जाए, और जो जिसकी दृष्टि भोग विलास की है वो विचार कर रहा है कि अगर जीवित अवस्था मुझे प्राप्त हो जाती तो बहुत सुख मुझे इससे प्राप्त होता, और जो मुनि महाराज जी हैं वे वहीं पर ध्यान में लीन होकर के देख रहे हैं बैठे हुए कि इस मनुष्य पर्याय को पा करके और अपने जीवन का कल्याण ना करके और अंततः जीव मरण को प्राप्त हो जाता है, अगर ये चाहता तो अपने इस जीवन को सार्थक बना सकता था, ऐसा विचार कर रहे हैं। दे एक ही है, तीन लोग अलग अलग, तो वह दे तीनों के लिए अलग अलग निमित्त बनी, जिसका जिस तरह का भाव है उसके लिए वैसा निमित्त बनेगा। इसलिए कह रहे हैं कि सबकी परिणति अपने